سو ہم چند لمحوں کے لیے خدا کے حضور جھکیں، اس سے حکمت اور دنائی مانگیں. خدا باپ، آج ہم جو کچھ بھی پڑھیں، ہم سب کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی، اور خدا و خدا دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی قوت اور طاقت دے. اور آج کے دن میں، آج کی فتح میں، آج کی جو خداوند خدا ہمیں خوشی اور شادمانی حاصل ہے، خداوند دوسروں تک پہنچائیں. یسوع مسیح کے نام میں آج جو کچھ بھی ہم سیکھیں، خدا پاک روح ہم سب کی رہنمائی کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں. آمین. جیسا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد کے بعد یسوع مسیح اپنے لوگوں پر کتنی دفعہ ظاہر ہوا؟ 17 دفعہ. کتنی دفعہ ہوا؟ 17 دفعہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر، لوگوں پر، راہی مسافروں پر ظاہر ہوا. اور اس کے ظاہر ہونے کا، اس کے نظر آنے کا، اس کے دکھائی دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ جانے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق زندہ اور سچا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتہ نے قبر کے پتھر کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ یسوع مسیح کے بدن کو باہر جانے کی ضرورت تھی. فرشتے نے پتھر کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ یسوع مسیح کو باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. پترس کے پتھر کو ہٹانے کا جو مقصد تھا یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح باہر جائے، بلکہ فرشتہ نے اس لیے ہٹایا تھا کہ لوگ اندر جا کر دیکھیں کہ وہ زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. سو آج ہم اس پانچویں واقعہ پر، اس پانچویں واقعہ پر جو شاگردوں پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس واقعہ کو دیکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو، اس کے بارے میں ہم نے کل چند ایک باتیں سیکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر غور کریں، اس میں سے سیکھیں، کیونکہ چند باتیں کل نہیں پہنچ سکی. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ باتیں اس حصہ میں سے سیکھیں. سو یہ پانچواں واقعہ ہے. کس کو واقعہ پہلا یاد ہے کہ یسوع مسیح کس پر ظاہر ہوا تھا؟ مریم مگدلینی. اور دوسرا؟ دوسری عورتوں پر. پھر تیسرا؟ تیسرا شمعون پترس پر. چوتھا؟ شاگردوں پر. دو شاگرد جو اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، اس گاؤں میں سے گزر رہے تھے. اور پانچواں واقعہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یسوع مسیح کے شاگرد اکٹھے ہیں، اور یہ واقعہ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 19 آیت میں سے ہم پڑھیں گے. سو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیں. پھر اسی دن، جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو. اس آیت میں اسی دن، یہ وہ کون سا دن ہے؟ اتوار کی شام. کون سی ہے؟ اتوار کی شام. کس لیے ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا. یہ فتح کا دن ہے مسیحیوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں مسیحت کی بنیاد، مسیحیوں کے ایمان کی امید قائم ہوئی کہ جیسے یسوع مسیح جیتا ہے، ہم بھی اس میں زندہ کیے جائیں گے. تو اسی دن، جو ہفتے کا پہلا دن تھا، ہفتے کا پہلا دن کیا ہوتا ہے؟ اتوار. اتوار کی شام کو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے، ان کے بیچ جا کھڑا ہوا. ان کے دروازے بند ہیں، ان کے دروازے بند ہیں. کیا کوئی دروازہ کھولا گیا؟ نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ فرشتے نے اس لیے پتھر کو نہیں ہٹایا تھا کہ یسوع مسیح نے باہر نکلنا ہے. یسوع مسیح اپنی جلالی حالت میں، یسوع مسیح اپنے قدرت والے بدن میں، وہ دیوار سے ادھر ادھر جا سکتا ہے، وہ آسمان اور زمین پر، وہ زمین کی تہ کے نیچے جا سکتا ہے. یہ وہ جلالی اور الہی قدرت کا کام اور نظارہ ہے. سو یسوع مسیح ان کے بیچ ظاہر ہوا، کوئی دروازہ نہیں کھولا گیا. وہ ڈرے ہوئے ہیں، یہودیوں سے ڈر رہے ہیں. اور پھر 20 آیت، और ये कहकर उनसे कहा उनसे अपने और ये कहकर उसने अपने हाथ और अपनी पसली उनको उनको दिखाई अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शिगिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यहां पर यीशु मसीह ने उनको फिर सबूत के तौर पर अपने हाथ और पसली दिखाई कि मैं ही हूं, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं ही हूं जो तुम्हारा खुदावंद हूं। ये वो पसली है जिस पर जब यूहन्ना वहां पर मौजूद है तो यीशु मसीह ने उसे याद दिलाया कि ये वही पसली है जिस पर उस रूमी सिपाही ने नेजा मारा था कि देखे कि यीशु मसीह जीता है या फिर मर गया है। और यीशु मसीह ने अपनी पसली दिखाई, अपने हाथों को दिखाया जिसमें क्या लगाए गए थे, किल लगाए गए थे। और फिर 21वीं आयत, जब उन्होंने देखा तो वो खुदावंद को देखकर खुश हुए। 21वीं आयत, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्दस लो। यहां पर यीशु मसीह उनको फिर याद दिलाता है कि मेरे आने का मकसद क्या था, कि निजात लेकर आऊं। मेरे आने का मकसद इस जमीन पर था कि तुम्हारा रिश्ता बाप के साथ दुरुस्त करूं, उस टूटी हुई रिश्तेदारी को क्या करूं, फिर से जोड़ दूं, उस दीवार को जो तुम्हारे और खुदा के दरमियान था उसे मैं तोड़ दूं, ताकि तुम खुदा के साथ बातचीत कर सको, खुदा के साथ राबता रख सको। सो कहता है कि जिसने मुझे भेजा, जिस तरह मुझे भेजा गया, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। किस मकसद के लिए? ताकि अब भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका खुदा के साथ रिश्ता तल्लक टूटा हुआ है, जो अब भी मौत की हालत में हैं, जो अब भी जिंदगी के पैगाम से महरूम हैं, जिन्होंने अब भी यीशु मसीह की उस खुशखबरी को नहीं सुना, जिन्हें अब भी उम्मीद नहीं है कि मुर्दे जिंदा होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा एक काम, एक मकसद पूरा करने के लिए, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को भेजा था, आप तो याद होगा कि जाओ सारी कौमों में जाकर मेरे नाम की गवाही दो, मेरे नाम की मनादी करो, मेरे नाम की शहादत दो, मेरे नाम की बशारत दो, खबर दो, शहादत दो, गवाही दो। ये सब क्या बनता है? यही कि जाकर बताओ। और फिर कहा और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्दस लो। उन्हें वो इख्तियार, वो कुवत, वो ताकत दी। और फिर लिखा है 23वीं आयत में, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। सादा सी बात है, उस वक्त यीशु मसीह ने ये इख्तियार शिगिर्दों को दिया था कि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है ये बात कहने का कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए, और जो कोई ना कबूल करेगा उसे पूरे इख्तियार के साथ कह सकते हो कि तुम अब भी उस गुनाह की हालत में हो, अब भी उस मौत की हालत में हो। So, ये था पांचवां वाकया। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुआ, उसने अपने शिगिर्दों को दिखाई देकर हुक्म दिया, अपने शिगिर्दों को दिखाई देकर उनकी हौसला अफजाई की। और हम शिगिर्दों की हालत दे चुके हैं कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा है, दरवाजे बंद है यहूदियों के डर से। यहूदी उस वक्त के दौर में हैकल में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर खुदा की इबादत में, शरीयत के लिहाज से, दूसरे कामों से, और फिर कारोबारी लिहाज से और इख्तियार में वो सबसे बढ़कर आगे थे। इसलिए लोग यहूदियों से डरते थे क्योंकि इख्तियार था, और फिर दूसरी बहुत सी वजूहात हो सकती है। इसलिए शिगिर्द यहां पर डरे हुए हैं और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सलामती हो। सलामती का जब हम मतलब देखते हैं तो कहता है कि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो। ना उम्मीदी में इत्मीनान, खौफ में तसल्ली और परेशानी में राहत। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं, तसल्ली देता हूं और मैं तुम्हें क्या करता हूं, हुक्म देता हूं कि जाओ। ऐसे वाकया आपकी जिंदगी में भी गुजरे होंगे कि एक वक्त था कि आप डरे हुए थे, परेशान थे और खौफजदा थे, लेकिन खुदा के कलाम में से आपको तसल्ली मिली। जैसे इन शिगिर्दों को यीशु मसीह ने भेजा और उन्होंने मनादी की, वैसे ही हम सब के लिए भी हुक्म है कि हम भी उसकी बशारत दें, उसकी मनादी करें। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है हर एक चीज का वक्त है, हर एक काम का वक्त है, हर एक काम जो कारोबार जो मकसद जमीन पर करते हैं हम, उसका एक वक्त है। सादा सी बात है, चाय पीने का एक वक्त है, रोटी खाने का एक वक्त है, दुआ करने का एक वक्त है और सो जाने का एक वक्त है। सो इस वक्त ये घबराए हुए हैं, लेकिन अगले ही लम्हों में यीशु मसीह उन्हें इख्तियार देता है, इत्मीनान देता है, हौसला देता है, कुव्वत और ताकत देता है। मिसाल के तौर पर एक वक्त था, आपने यूसुफ नाम शख्स का वाक्या सुना होगा जिसने यीशु मसीह की मदद की थी सलीब उठाने में। अरमत्तिया का रहने वाला, किस शहर का रहने वाला? अरमत्तिया का। ये यरूशलम से 5 मील के फासला पर शमाल की तरफ गांव था, वहां पर वो रहता था। और उस शख्स का काम क्या था? वो यहूदियों की काउंसलिंग यानी के उनको मशवरे देने वालों में से एक उनका रुकन था, मेंबर था। इज्जतदार था, दौलतमंद था, लेकिन क्या था? खुफिया तौर पर यीशु मसीह का शिगिर्द, खुफिया तौर पर। लेकिन एक वक्त आया कि उसने उस खुफियापन को छोड़कर जाहिरी तौर पर उसका इजहार किया। देखना चाहते हैं इस बात को, मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 27वां बाप उसकी 57 आय से। यहां पर हम उस शख्स से मिलेंगे यूसुफ, जो अरमत्तिया का रहने वाला था, जिसने दलेरी से, जिसने अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का और अपनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह की क्या की? खिदमत की। मत्ती की इंजील 27 बाप उसकी 57 आय से। और यहां पर हम उस शख्स से मिलते हैं, 57 आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमत्तिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शिगिर्द था। ये शख्स आया, इसने बादशाह से पूछा कि मुझे यीशु मसीह का बदन दे। इसने एक कब्र तैयार की थी जिसमें उसने यीशु मसीह को रखा। सो 12 शिगिर्दों के अलावा यीशु मसीह के और बहुत से खुफिया शिगिर्द थे जो उसके पास आते थे, उससे सीखते थे और फिर जहां कहीं भी वो रहते थे यीशु मसीह की मनादी करते थे। और इसी शख्स ने आकर यीशु मसीह की लाश पिलातुस से पूछी थी कि मुझे दे दे ताकि मैं उसे तैयारी के दिन जुमे की शाम उसे रखूं कब्र में, ताकि वो वाकया पूरा हो कि उसकी कब्र को जो नबुवत थी कि उसकी कब्र को जो वाक्या लिखा था, वो पत्थरों की कब्र जो खुदवाई गई थी उसे रखा जाए। और ये है अरमत्तिया शहर का रहने वाला यूसुफ। और फिर हम एक और शख्स को देख सकते हैं, निकुदीमस। वो भी यीशु मसीह का शिगिर्द था। ये वही निकुदीमस है जो रात के अंधेरा में यीशु मसीह के पास आया था सीखने के लिए कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। यीशु मसीह ने कहा, तू तो शरा का आलम है, तू सब कुछ जानता है, तू सब शरीयत से वाकिफ है, तुझे नहीं पता कि कैसे निजात पानी है? तो यीशु मसीह ने कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, ये वही निकुदीमस है, इसके बारे में भी हमें जिक्र मिलता है कि ये भी अपना रुपया पैसा लेकर उसने खुशबूदार चीजें खरीदी यीशु मसीह की खिदमत के लिए। देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाप उसकी 38वीं आयत में, उसकी 38वीं आयत में ये यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील 19वां बाप उसकी 38वीं आयत। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही के यीशु की लाश ले जाए, पिलातुस ने इजाजत दी, पस वो आकर उसकी लाश ले गया। और 39वीं आयत, और निकुदीमस भी आया, और निकुदीमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर यानी कि 50 किलो के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। ये खुशबूदार मसाले थे जो वो लेकर आया 50 किलो के करीब, किस लिए? यीशु मसीह के बदन पर मलने के लिए, क्योंकि 40वीं आयत में लिखा है, पस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है, जैसे आज हमारे भी दस्तूर है कि कपड़े में मुर्दा को लपेटते हैं, खुशबूदार चीजें लगाते हैं। ये उस वक्त में यहूदी रिवाज था। सो यहां पर निकुदीमस जो एक वक्त में रात को आया, आज सामने आकर यीशु मसीह को अपना हदिया और अपना क्या कहता है वक्त और अपनी गवाही देता है कि मैं भी यीशु मसीह का शागिर्द हूं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आएगा कि हम पतरस की तरह इनकार करेंगे, घबराएंगे, डरेंगे, परेशान होंगे छोटी छोटी बातों से, लेकिन एक वक्त होगा कि जब पतरस ही की तरह बड़े दलेरी से उसकी गवाही देंगे। इसलिए इन वक्तों के लिए अपने आप को तैयार रखें, इन मौकों के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह वो मुर्दों में से, क्या वो आपको जिंदा कर सकता है? क्या आपकी उम्मीद उस पर है? क्या वो हमेशा की जिंदगी का मालिक है? हालेलुया। आए हम खुदा के हुजूर झुके। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए कि तू हमारी नाउमीदी में हमें उम्मीद, तू हमारी कमी में हमें खुदा मुखा मुहैया करता है, तू हमारी बीमारी में हमें शफा देता है, तू हमारे खुदा मुखुदा हौसलों को जो टूट जाते हैं खुदा मुखुदा मजबूत करता है। आज तमाम बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए इस पैगाम के वसीला से, जैसे खुदा मुखुदा तेरे शिगिर्द डरे हुए थे लेकिन उन्होंने तेरी आवाज को सुना, पहचाना कि तू जिंदा है और तू कुदरत का मालिक है, तो बड़ी दलेरी से तेरी खिदमत की। हम सबको भी हर रोज, हर दिन, हर पल, हर वक्त अपने घरों में, अपनी बीवी के सामने, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, कलीसिया के सामने, दुनिया के सामने खुदावंद अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।